हरे कृष्ण नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद चतुर्दशी के। तो आज बहुत ही पावन उत्सव है, तो ये है चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय संख्या 13। नाम नित्यानंद तुमित रूपे नित्यानंद हे तुम नित्यानंद राम मूर्तिमान। नाम नित्यानंद तुमे रूपे नित्यानंद हे तुमे नित्यानंद राम मूर्तिमान। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज के द्वारा। आपका नाम नित्यानंद है, आपका रूप नित्यानंद है, आप आनंद से सनातन आनंद से भरे हैं और आप स्वयं भगवान बलराम हैं। तात्पर्य, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हुए महाप्रभु ने कहा कि आपका नाम ही नित्यानंद है और आपका रूप साक्षात नित्यानंद है, सनातन आनंद, और ये आनंद का प्रवाह कभी रुकता नहीं है क्योंकि आप स्वयं बलराम हैं। बृहद यामल में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलरामो ममय वंशो सोऽपि तत्र भविष्यति नित्यानंदो इति खातो न्यासी चूड़ा मनीक्षितो। श्री बलराम जो कि मेरे विस्तार हैं, वो नवद्वीप में सन्यासी चूड़ा मणि के रूप में प्रकट होंगे और नित्यानंद के रूप से जाने जाएंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5-6 में भी कहा गया है, ए कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र से बलराम संगे श्री नित्यानंद। जो मूल भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और बलराम जी उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आएंगे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। नित्यानंद प्रभु की। और नित्यानंद जी के विषय में कहा गया है कि उनकी क्रियाओं को वैदिक शास्त्र भी नहीं समझ सकते। जो वैदिक शास्त्र हैं वो भी इनकी क्रियाओं को नहीं समझ सकते। और बहुत ही गूढ़ चैतन्य महाप्रभु को स्वयं छन्न अवतार बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु आज से 520 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, अंत में मन मना भव बन भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मां मयुषी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यजा मां मे कम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयामि मां शुचा। सब कुछ छोड़कर, सारे के सारे कर्तव्य छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, 24 घंटे मेरा चिंतन करते रहो। जब ये आदेश भगवान देकर गए, अब इन आदेशों का पालन करना किसी बात जीव के लिए संभव नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान का स्मरण 24 घंटे करने के लिए हृदय में कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के अगर कोई शरणागत लेगा तो वो शरणागति झूठी होगी, दिखावटी होगी, आंशिक होगी और पूर्ण रूप से परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जब कृष्ण प्रेम विकसित हो जाएगा तो पूर्ण रूप से शरणागति हो जाएगी। अब कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और शिक्षा देने आते हैं, अपने ही आचरण से सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान ये कार्य स्वयं नहीं कर सकते, भगवान एक कार्य करते हैं अपने स्वांश, अपने जो उनके पहले अंश हैं बलराम जी यानी कि नित्यानंद प्रभु के द्वारा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं छिपे हुए अवतार हैं और जो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करेंगे वो कितने गुण होंगे, इसलिए नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा करना और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, तत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जितना हम नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे हम नित्यानंद प्रभु से हृदय से संबंध जोड़ पाएंगे, और ये बहुत आवश्यक है कि हम उनके साथ संबंध जोड़ें, क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु के हमारी कोई गति नहीं है। इस संसार में प्रत्येक जीव आनंद की तलाश में है, नित्य आनंद की तलाश में है, और बिना नित्यानंद प्रभु की शरण में जाए नित्यानंद कैसे मिल सकता है, छोटी सी बात है। और ये जो विषय है संसार के अधिकांश लोग जानते नहीं है, कितने कम लोग नित्यानंद प्रभु के विषय में जानते होंगे बताइए, कितने कम लोग। कितने कम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं, कितने कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, और कितने कम लोग ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहले तो लोग ये नहीं जानते हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर ये नहीं जानते कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, फिर ये नहीं जानते कि परमात्मा से ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, फिर ये नहीं जानते कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं गौरांग महाप्रभु के माध्यम से, और फिर ये नहीं जानते कि गौरांग महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। कितने छुपे हुए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम नित्यानंद प्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। तो आज हम यही सब चर्चा करेंगे। सभी वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी से कृपा की याचना करते हुए, आप सब भक्तों के आनंद के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास करेंगे कि नित्यानंद प्रभु जी को कुछ हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान स्वयं इस मध्य खंड के 13वें अध्याय में चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद एई तुम्हें नित्यानंद नाम मूर्तिमंत। चैतन्य महाप्रभु यही स्थापित कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम्हारा रूप नित्यानंद है, तुम हमेशा सनातन आनंद से भरे हुए हो और तुम साक्षात बलराम हो। चैतन्य महाप्रभु ने कई जगह स्थापित किया कि मेरे में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है, और जो कोई नित्यानंद से द्वेष करेगा मैं उसको कभी भी कृपा नहीं दूंगा और उसके जीवन में हमेशा बाधाएं ही बाधाएं रहेंगी। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। बलराम जी और नित्यानंद जी का एक ही कार्य है कि बद्ध जीवों का उद्धार करना, और वो तब तक बद्ध जीवों को कृष्ण के पास नहीं जाने देते जब तक कि बद्ध जीव का अपना विरोधी रवैया ठीक नहीं कर लेते। तो पहले इस भौतिक जगत में वो बद्ध जीव का जो उनका गलत व्यवहार है, जो भगवान से विरोध करने की जो उनकी परिस्थिति है उसको वो ठीक करते हैं, फिर उसको भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं सेवा के लिए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मोई चैतन्य रे दास, मैं तो चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। वो चैतन्य महाप्रभु के मूल सेवक हैं, जैसे कि बताया गया है बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा बलराम जी के साथ साथ पांच अन्य रूपों में करते हैं। बलराम जी या नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु और कृष्ण के लीलाओं में उनका सहयोग देते हैं, और पांच दूसरे रूप में भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का संचालन करते हैं। पांच दूसरे रूप कौन कौन से हैं? स्वयं महासंकर्षण के रूप में, और कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष के रूप में, ये पांच रूप है। तो महासंकर्षण, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, इसके द्वारा वो सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, और जितने भी भगवान के अवतार होते हैं सब के सब नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही होते हैं, और नित्यानंद प्रभु ये सारे जीवों के उद्गम स्त्रोत्र हैं। नित्यानंद प्रभु कोई स्वयं साधारण जीव नहीं है, स्वयं भगवान है और सभी जीवों के उद्गम स्त्रोत्र हैं। और शेष के रूप में वो भगवान की क्या क्या सेवा करते हैं? भगवान का बिस्तर बनते हैं, भगवान के अलग अलग आभूषण बनते हैं, भगवान के सिंहासन बनते हैं, भगवान का जनेऊ बनते हैं, भगवान का धाम बनते हैं। शेष का अर्थ है कि सेवा की भावना का अंत, जो अल्टीमेट एंड है सेवा की भावना का, वो है शेष। उनका नाम इसलिए शेष पड़ा है, और अपने अनंत मुखों से भगवान का वो अनंत समय से गुणगान कर रहे हैं। तो ये है नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, जो कि भगवान के निरंतर हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, और उनका यही विचार होता है कि कैसे बद्ध जीवों को हम वापस भौतिक जगत से भगवान के शरण में लेकर आएं। और नित्यानंद प्रभु और बलराम जी प्रकाश विग्रह हैं, क्योंकि बद्ध जीव बहुत सीमित और क्षुद्र है, वो अनंत भगवान को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, इसलिए बलराम जी और नित्यानंद जी को प्रकाश विग्रह बोला जाता है। और बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भी चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर कोई 100 जन्मों तक गौरांग महाप्रभु की का भजन करते रहे लेकिन नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करे तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य चैतन्य में लिखा गया, ज्यादा से ज्यादा वो विष्णु का उपासक बन जाएगा और उसको कोई कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जैसे कि वर्णन आता है कि कृष्णदास कविराज जी के गोस्वामी जी के घर में उन्होंने एक संकीर्तन का आयोजन किया था, और यह संकीर्तन 24 घंटे चल रहा था। उन्होंने उस संकीर्तन में एक परम वैष्णव को आमंत्रित किया था, वो परम वैष्णव का नाम था मीनकेतन रामदास। मीनकेतन रामदास जी नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, बिल्कुल अवधूत, वो अपने हाथ में बंसरी रखते थे और एक जगह आके कोने में बैठ गए। जो भी वैष्णव आता था वो उसको मारते थे बंसरी, या फिर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे और जोर जोर से हंसते थे, और हर वैष्णव को इसमें आनंद आता था। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो बड़े भाई थे उन्होंने एक पुजारी को बुलाया होता जिसका नाम था गुणार्व मिश्र। तो गुणार्व मिश्र पूजा कर रहे थे, सभी भक्त लोग मीन के नामदास जी को आदर दे रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, लेकिन जो गुणार्व मिश्र थे इन्होंने को ज्यादा इसको मीन के नामदास जी को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, ज्यादा आदर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये नित्यानंद जी का भक्त है और नित्यानंद तो ऐसे अवधूत हैं, पागल से हैं, पता नहीं क्या है, सन्यासी बन के घूमते हैं, कुछ भी आचरण ठीक नहीं है उनका, पता नहीं कहां से ऐसे, वो नित्यानंद प्रभु कुछ समझते नहीं थे। और जो कृष्णदास कविराज जी के बड़े भाई थे उनका भी ये कहना था, वो चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे लेकिन नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं मानते थे। उन्होंने जब मीनकेतन रामदास जी को कोई वैल्यू नहीं दी तो मीनकेतन रामदास जी को बहुत क्रोध आया, और साथ में कृष्णदास कविराज जी को भी बहुत क्रोध आया। तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते ये तो दोगलापन है, इससे अच्छा तो आप नास्तिक हो जाइए, किसी को मत मानिए वो ज्यादा अच्छा है, और कोई चैतन्य महाप्रभु को मान रहा है नित्यानंद प्रभु को नहीं मान रहा ये तो अर्ध कुकुट न्याय है कि जो मुर्गी का दूसरा हिस्सा अंडा देता है वो मेरे काम का है और जिसको दाना खिलाना वो काम का नहीं है। तो बोले ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो आपका दोगलापन है। ये सब देखकर मीन कहते नामदास जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने वही बंसरी तोड़ी और चले गए, और उससे क्या हुआ कृष्णदास कविराज जी के बड़े भाई का सर्वनाश हो गया। उसके बाद जब कृष्णदास कविराज जी उस समय उस रात को विश्राम कर रहे थे तो उनके स्वप्न में कौन आए, स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य चैतन्य ने बहुत सुंदर उनके रूप का वर्णन किया गया है कि उनका जो काया देह थी दिव्य देह का रंग था जिसे कहते हैं एकदम चमकता हुआ काला रंग, और उन्होंने पीले रंग का उन्होंने बढ़िया सी पगड़ी बना रखी थी और सुंदर सुंदर उनके आभूषण थे। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो आभूषण डालते हैं वो आभूषण नवदा भक्ति के अलग अलग अंग के अवतार हैं। क्या गुणगान है देखिए, नित्यानंद प्रभु के द्वारा डाले हुए आभूषण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम ये सबके अवतार हैं जो नित्यानंद प्रभु आभूषण डालते हैं। तो उन्होंने कर्णों में कुंडल डाल रखे थे और सुंदर सुंदर बाजू बंद और बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए, और उनकी आंखें जैसे नशे में चूर दिव्य उन्माद से, और उनके जो दांत थे ऐसे लग रहा था जैसे कि अनार के दाने की तरह लाल लाल, क्योंकि वो सुपारी का जैसे पान किया हो। और इस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने कृष्णदास कविराज जी को बोला कि उठो कृष्णदास और जाओ वृंदावन, एक ये स्थान तुम्हारे रहने लायक नहीं है। और नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज जी से क्यों प्रसन्न हुए, फिर कृष्णदास कविराज जी ने किनको डांटा था, अपने बड़े भाई को, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। तो जहां नित्यानंद प्रभु का मान ना हो या उनकी स्थिति को ना समझा जाए तो हमें भी विरोध करना चाहिए और हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। बोले जाओ वृंदावन, और उसी समय तुरंत कृष्णदास कविराज जी उठे और वृंदावन की तरफ चल पड़े। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमें वृंदावन धाम मिलता है। बताया गया है, भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं दलेर गीत में, कि नित्यानंद प्रभु वृंदावन के खजाने के स्टोर कीपर हैं। स्टोर कीपर क्या बोलेंगे, भंडारक हैं नित्यानंद, जो वृंदावन के जो धन का खजाना है उसकी वो रक्षा करते हैं, और उनकी कृपा से ही हम वृंदावन में प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की स्थिति को जानना अति आवश्यक है। जो चैतन्य महाप्रभु का जीवों के साथ संबंध है वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही स्थापित हो सकते हैं, और चैतन्य प्रभु की सारी शक्तियां नित्यानंद प्रभु में है, और नित्यानंद प्रभु ही बल जीव को चैतन्य महाप्रभु से जोड़ते हैं। इसलिए हम सब साधकों के लिए अगर हमें भक्ति में एक सही आधार चाहिए, ठोस आधार, वो मिलेगा तब जब हम नित्यानंद प्रभु की स्थिति को अच्छे ढंग से समझेंगे, पूर्ण रूप से उनकी कृपा पर निर्भर रहेंगे, तब हमारी भक्ति में पूर्ण रूप से आधार मिलेगा। और साथ में नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमारी भक्ति में बड़ी से बड़ी अड़चन है या जो हमारा दुर्भाग्य हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर भजन गाते हैं, नेताई पद कमाला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाए जगत जुड़ाए જે છાય જગત જુડાય, હેનો નેતા બિને ભાય, રાધા કૃષ્ણ પાઈ તે નાય, દૃઢકારે ધરો નેતાર પાય, દૃઢકારે ધરો નેતાર પાય। તો યહાં પર ભગવાન બતા રહ્યા, નરોત્તમ દાસ ઠાકુર બતા રહે હૈ કે નિતાઈ પદ કમલ કોટિ ચંદ્ર સુશીતલ, નિત્યાનંદ પ્રભુ કે ચરણ કમલ કિસકે સમાન હૈ, કરોડો કરોડો ચંદ્રમા કે શીતલતા કે સમાન। ઉન્હોને એસા ક્યો નહીં બોલા કે નિત્યાનંદ પ્રભુ કે ચરણ કમલ ચંદ્રમા કી શીતલતા કે સમાન હૈ, કરોડો ચંદ્રમા કી શીતલતા કે સમાન હૈ, ક્યોંકિ ઇસ સંસાર કા જો તાપ હૈ વો કેવલ એક ચંદ્રમા કી શીતલતા સે નહીં જાયેગા। इस संसार का ताप जाएगा करोड़ों चंद्रमा की शीतलता से, तो करोड़ों चंद्रमा की शीतलता नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है। इस संसार का ताप क्या है? इस संसार का ताप है जो बद जीव की भोगने की प्रवृत्ति, प्रभुपाद कहते हैं मटेरियल फीवर, सबका ताप बहुत तेज है क्योंकि हम भोगना चाहते हैं हर परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में बद जीव को डाला जाए वो अपने भोगने का जुगाड़ कर लेते हैं, इतना उसके अंदर ताप है। तो इस ताप को शीतलता प्राप्त होगी अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेंगे, और इसी ताप के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसका कोई इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण हमें शीतलता प्रदान करेंगे, इतनी शीतलता देंगे, इतनी शीतलता देंगे कि संसार के ताप का हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्वम पूर्णम सुखायते, ये पूरा विश्व हमें ऐसे सुखपूर्ण लगेगा, हमें कोई अधिभौतिक अधिदेविक अध्यात्मिक क्लेश नहीं सताएंगे। इस नित्यानंद प्रभु के चरणों में इतनी हमें शांति मिलेगी, और क्या है, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेते ही क्या होगा, हमारा उद्धार शुरू हो जाएगा। क्या? ये छाए जगत जोड़ाए, हम इस संसार को पार कर जाएंगे, और फिर क्या होगा, हेनो नेताए बिना पाए राधा कृष्ण पाई ते नाए। इस संसार से छूट के हम कहां जाएंगे, परम व्योम पर तस्मात् भाव अन्य व्यक्त व्यक्त, इस संसार से परे एक और आध्यात्मिक जगत है, और वहां पर हम क्या पाएंगे, राधा कृष्ण की सेवा पाएंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा अनंग मंजरी के रूप में भी करते हैं। अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, मंजरी है, और भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर महाराज बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी नायिका है, जितने भी भगवान के अंतरंग भक्त वो श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत है, और श्रीमती राधा रानी उन्हीं भक्तों को स्वीकार करती हैं जिनको नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करते हैं। नित्यानंद प्रभु जिनको रिकमेंड करते हैं श्रीमती राधा रानी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं क्या है, अनंग मंजरी है, तो वो बोल देंगे इनको ले लो, तो राधिका श्रीमती राधा रानी सेवा में लगा लेंगे। और नित्यानंद प्रभु भगवान क्या कहा जाने कि उनकी कृपा से हम राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, और जीव को जो पूर्ण रूप से संतुष्टि है वो राधा कृष्ण की सेवा करके ही मिलेगी, ये हमारी पूर्ण सिद्धि है ना। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया भोजिया विश्व खाइना। तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे जब हम राधा कृष्ण की सेवा में लगेंगे, और नित्यानंद प्रभु किसी को भी ये कृपा कर सकते हैं, अधम से अधम पतित से पतित व्यक्ति को भी वो प्रेम बांट सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम में उन्मत्त है। जैसे एक व्यक्ति ने शराब पी रखी है खूब, पागल है एकदम, बिल्कुल नशे में चूर है। आप किसी को अपने घर में अनुभव भी होगा, कोई हमारे पे अंकल या संबंधी जब शराब में चूर होते हैं तो बच्चों के पास जाते हैं, अंकल अंकल 100 रुपए दे दो, कह रहे 500 रुपए ले, तो सो गया 500 रुपए ले, और खूब प्रेम करते हैं, गले से लगा लेते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है 500 रुपए ले। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा मांगेंगे नित्यानंद प्रभु प्रेम दे देते हैं, सीधा प्रेम, जो कि ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी भी उस प्रेम से वंचित हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु किसी भी अधम से अधम पापी से पापी व्यक्ति को जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है उनको ये प्रेम दे देते हैं। इसके साक्षी कौन है, जगाई मदाई के साक्षी हैं जगाई मदाई। तो कितना स्कोप है हमारे लिए, कितनी उम्मीद है, हम सबकी उम्मीद एकमात्र नित्यानंद प्रभु के चरण है, और हम उनके चरणों को सही ढंग से दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़ के रख सकते हैं अगर हम उनकी स्थिति को सही ढंग से जान जाएं। तो हमारे लिए और कोई उम्मीद नहीं है। एक बार शिवा सांगन में महाप्रभु ने व्यास पूजा मना रहे थे नित्यानंद प्रभु की, और व्यास पूजा मनाते मनाते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गुणगान करते हुए कहा कि इनका अवतार हुआ है, जो वैष्णव अपराधी है उनको भी ये कृष्ण प्रेम दे देंगे। इससे पहले जब अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को पुकारा था तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु ने बताया था कि मैं सबको कृष्ण प्रेम बांटूंगा, लेकिन उनको नहीं दूंगा जो वैष्णवों से द्वेष करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे, उनको छोड़कर सबको मैं प्रेम बांटूंगा। और यहां पे शिवा सांगन में महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कृपा से अपराधी लोग भी प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो जब पढ़ा हमने ये, मैं कह रहा बहुत उम्मीद है, नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं। तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों को बहुत दृढ़ता से पकड़ के रखना चाहिए, और उनके चरण ही, चरण कमल ही हमारे लिए सारे के सारे, जिसे बोलते हैं, सारी सारी बाधाएं हटा देंगे। इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु हैं, और गौरव निताई कृष्ण बलराम से भी श्रेष्ठ है। एक बारी सची माता को एक सपना आया, तो सपने में क्या देखा उन्होंने कि उनके घर में विग्रह थे कृष्ण बलराम के। तो उन्होंने बोला, विश्वंबर को बुलाया, बोलो एक अजीब सा सपना देखा है मैंने। उन्होंने क्या देखा है कि मैंने ये देखा है कि मैं कृष्ण बलराम जी की अर्चना कर रही थी, उनके सामने मैंने भोग लगाया, और तभी तुम और नित्यानंद आगे भागते हुए, और तुम नित्यानंद भागते हुए आए और सारा सारा भोग उठा लिया। बोले इसको हम खाएंगे। बलराम जी ने बोला, क्या बदतमीजी है, नित्यानंद प्रभु ने जो करना है कर लो, अब तुम्हारा समय गया है ना, माखन चोर का समय गया, अब ब्राह्मणों का समय आ गया है, कलयुग है, तो हम खाएंगे इसको। बलराम जी ने बोला, खबरदार जो हाथ लगाया मैं तुम्हारी शिकायत कृष्ण को लगा दूंगा। बोले जो लगाना लगा दो, मेरे साथ विश्वंबर है, वो सबको संभाल लेगा। तो दोनों में खूब लड़ाई हो रही है, और गौरा निताई ने कृष्ण बलराम का सारा सारा भोग छीन लिया, उनको आल्टर से हटा दिया और खुद बैठ गए और सारा सब भोग खा लिया। तो ये कह के बड़ी बड़ा अजीब सा सपना है, तो उसका क्या मतलब है? तो भगवान गौरांग महाप्रभु मुस्कुराने लगे, बोले बिल्कुल ठीक देखा है, लेकिन किसी को बताना मत, किसी को मत बताना, क्योंकि स्वयं वो भगवान श्री कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, लेकिन दोनों कृष्ण और बलराम से भी ज्यादा कृपालु है। कृष्ण बलराम से भी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपालु है, और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है। तो इसलिए पूर्ण रूप से हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी महिमा को समझना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम भक्ति की गहराइयों को समझ पाएंगे। भक्ति बहुत गूढ़ है, तो नित्यानंद प्रभु कृपा से ही हम ये सब जान पाएंगे। वो हमारे हृदय में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। अभी समय निकल गया, हमें याद दिला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने नित्यानंद प्रभु के 12 नामों का वर्णन कहा है। वो बोला कि जो सुबह उठकर सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 के बीच में इन 12 नामों का उच्चारण करेगा, उसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो अभी आपको 12 नाम अपने हमारे साथ गाएंगे, 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो आज नित्यानंद त्रयोदशी भगवान माफ कर देंगे। तो इन सब 12 नामों का हम उच्चारण करते हैं, हम इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, और प्रतिदिन हम इसका उच्चारण करेंगे। नित्यानंद अवधूतेन्दुर वसुधा प्राण वल्लभा जानवी जीविता पति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मावती सुता श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा भावन्मत्त जगत्राता रक्त गौर कलेवरा। ये 12 नाम है। पहले है नित्यानंदो, नित्यानंदो का अर्थ है कि ये पूरे आनंद के, नित्य आनंद के स्वरूप है नित्यानंदो, पहला नाम। अवधूतेन्दु, जितने भी अवधूत हैं उनके ये चंद्र है, अवधूत चंद्र, अवधूतेन्दु दूसरा नाम। तीसरा नाम है वसुधा प्राण वल्लभा। नित्यानंद प्रभु की 2 भार्याएं थी, वसुधा और जानवा, तो वसुधा के प्राण वल्लभ है, तो ये है। और चौथा है जानवी जीविता पति, वो जानवी माता को प्राण देने वाले हैं, जानवी जीविता पति। और पांचवा है कृष्ण प्रेम प्रदा, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और छठा है प्रभु, वो सारे भक्तों के स्वामी हैं, ये 6 नाम। सातवां नाम है पद्मावती सुता, उनकी माता का नाम था पद्मावती, उनके पुत्र श्रीमान, जो कि वो हमेशा क्या है, श्रीमान ऐश्वर्य पूर्ण है, आठवां। नवा है सच्ची नंदन पूर्वजा, वो सच्ची माता के पुत्र गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई हैं। बताया जाता है कि विश्व रूप जो विश्वम्बर के गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो जब संन्यास लेकर गए और अप्रकट होने के बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रवेश किया। तो विश्व रूप और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। भाव उन्मत्त, हमेशा भाव में उन्मत्त पागल रहते हैं। जगत त्राता, जगत का उद्धार करने वाले। रक्त गौर कलेवरा, इनका रंग कैसा है? रक्त गौर कलेवरा, जो लाल रंग मिक्स किसके साथ है? गौर पीले रंग के साथ, जो लाल रंग मिक्स हो जाए, ये उनके शरीर की कांति है। तो ये 12 नाम है। और बताया गया है कि जो भी इन 12 नामों का उच्चारण प्रतिदिन करेगा प्रातःकाल में, सारे के सारे दुविधाओं से मुक्त हो जाएगा और उनको सबसे प्रेम, सबसे उसकी जो मुख्य इच्छा है वो प्राप्त होगी और बहुत शीघ्र ही वो चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करेगा। कितना सरल है, कितनी सरल होगी हमारे लिए भक्ति। बस केवल 12 नामों का उच्चारण सुबह सुबह उठ के करना है। हरे कृष्ण मोहन का जब भी कर रहे हैं बोले तो बहुत सुपर सुपर शॉर्टकट बता दिया 16 वाला की जगह 12 नाम केवल। तो ये 12 नाम करेंगे तो हमारा अच्छे ढंग से जप करेंगे, नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी हमारी। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। भगवान नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही असाधारण असाधारण लीलाएं दिखाई, तो उनकी कुछ लीलाओं का हम वर्णन करेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण करके हमारा उनके साथ हृदय से संबंध बनेगा, संबंध स्थापित होगा, और जब संबंध स्थापित होगा फिर हमसे उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। ये जो कृपा मांगना कोई बुद्धि का कार्य नहीं है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम फायदा हो रहा है, बुद्धि का काम लगाया। अच्छा पापी से पापी व्यक्ति कृपा मिल जाती है, कौन है भाई, किससे मिलती है? अच्छा वो लेते हैं, चलो मांग लेते हैं क्या है? बुद्धि का उपयोग करके कृपा नहीं मिलेगी, कृपा मिलेगी हृदय से, है ना। हृदय से चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु के सामने, कृपा की याचना करनी पड़ेगी। और हृदय से कैसे उनको पुकार सकते हैं? जब कुछ संबंध हो, जानते हो कि हां ये मेरे स्वामी हैं, ये सब मुझे जितनी भी मेरी रुकावटें हैं ये दूर कर सकते हैं, ये बहुत कृपालु हैं ना। क्योंकि ये हमेशा गौरांग महाप्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, तो जो इनकी आज्ञा इनका पालन करूंगा तो मैं इनको आकर्षित कर सकता हूं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा हृदय से उनके साथ संबंध स्थापित होगा। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं बहुत ही जिसे कहते दिव्य उन्मत्तता से भरी हुई है ना। और एक साधारण व्यक्ति को लगे क्या, किस तरह के ये व्यक्ति हैं, कैसी इनका व्यक्तित्व है। अभी ये जो श्लोक महाप्रभु ने गाया पीछे, नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद ए तुम्हें नित्यानंद राम मूर्ति मंत, जो चैतन्य भागवत में आया, तो इस 13वें अध्याय में बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु क्या करते थे। नवद्वीप में जब आए तो गंगा में प्रवेश कर जाते थे, और गंगा में वर्षा के समय में बड़े बड़े मगरमच्छ होते थे। नित्यानंद प्रभु उनके मगरमच्छों के बीच में चले जाते थे और तैरते रहते थे। सब लोग कहते थे क्या हो गया, क्या हो गया, खा जाएंगे सर। तो उनको दिखाने के लिए क्या करते थे, पानी मगरमच्छों पर फेंकते थे और कृष्णा कृष्णा बोलते थे। सब बोले अजीब है, क्योंकि उनको तो वो तो अनंत है, अनंत शेष के रूप में ऐसे ही लाते हैं सागर में, तो बड़े आराम से मगरमच्छों के ऊपर पानी डाल रहे हैं। और एक बार ऐसे करते हुए क्या हुआ कि गंगा से नहा स्नान करके आए और निमाई पंडित अपने घर में थे सची माता के आंगन में, तो निमाई पंडित के सामने प्रकट हो गए बिल्कुल नग्न, बिल्कुल नग्न प्रकट हो गए और रो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह उनका चेहरा, इतने मासूम और कृष्ण प्रेम में रोए जा रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने देखा, वो भी मुस्कुराए, उनके ऊपर जो सर के कपड़ा बांध रखा था और उस कपड़े से तुरंत उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरीर को ढका और उनको रखा, फिर बैठाया और फिर उनके शरीर पर चंदन का लेप किया, उनको सुंदर फूलों की माला डाली और फिर उनका गुणगान शुरू किया। तो उसी गुणगान में जितने महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम नित्यानंद हो, तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम्हारा रूप नित्यानंद है, तुम आनंद से भरे हुए हो, तुम साक्षात बलराम हो। इसके बाद वो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रसादे सा हाय विष्णु भक्ति जाने है कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति, कि नित्यानंद के प्रसाद से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। और ये जान लीजिए कि नित्यानंद पूरे कृष्ण शक्ति से भरपूर है। इस ढंग से जब वो ऐसा करते हैं और फिर वो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि अपना कोपिन दो, कोपिन जैसे कि ब्रह्मचारी और सन्यासी डालते हैं कोपिन अंडर गार्मेंट्स के रूप में, तो नित्यानंद प्रभु से बोला कोपिन दो। नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उन्होंने अपना कोपिन दे दिया। हमें जानना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिख रहे हैं कि जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके सभी वस्त्र शुद्ध हैं और दिव्य हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो पगड़ी डाल रखी है वो श्रेष्ठ है और भगवान ने जो कोपिन डाल रखी है वो हमारे अंडर गार्मेंट्स की तरह गंदा होगा। हम कहेंगे हमारा कोपिन गंदा कपड़ा है ये तो, लेकिन भगवान के हैं दिव्य। इसी ढंग से भक्ति सिद्धांत महाराज ये भी लिख रहे हैं कि जो भक्ति में उन्नत है उसका मलमूत्र को अपने मलमूत्र के समान निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। जो भक्ति में उन्मत्त है भक्त, उनका मलमूत्र भी एक साधारण जीव के मलमूत्र से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त पद जल जो भक्तों के चरणों की धूली है वो इतनी श्रेष्ठ है। साधारण जीव के चरणों की धूली तो गंदगी है, लेकिन भक्तों के पदों की धूली इतनी श्रेष्ठ है। इसी ढंग से भक्तों का कोपिन और भगवान का कोपिन भी श्रेष्ठ है। तो नित्यानंद प्रभु को बोला कि अपना कोपिन दो, तो उन्होंने कोपिन दे दिया। फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुलाया और इस कोपिन के टुकड़े करके बोला कि इसको तो बड़े बड़े योगी इसकी इच्छा रखते हैं, और आप इसको ले जाइए अपने सर पे बांधिए और घर पे जाके इसकी पूजा कीजिए। तो हमें भगवान का कोई भी वस्त्र मिलता है हमें उसको सर पे लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको आल्टर में रखना चाहिए। तो उसके बाद भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सभी भक्तों को बोला आप इनके चरणों को धो। तो सभी भक्त लोग जल लाने लगे और नित्यानंद प्रभु के चरणों पर डालने लगे, और सभी भक्त लोग जल डाल रहे हैं और जल डालने के बाद सब उस जल को पी रहे हैं। उसके बाद जल पीने के बाद कोई 5 बारी पी रहा है, कोई 10 बारी पी रहा है, और नित्यानंद प्रभु हंसते जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भक्त लोग खूब उनके चरणों को धो रहे हैं और जल पी रहे हैं, और महाप्रभु स्वयं सबको बुलाकर चैतन्य प्रभु के चरणामृत को बांट रहे हैं। तो खूब भक्त लोग जल पी रहे हैं। कहे भले आजी धन्य हैला जीवन, कहे भले आजी सब खंडीला बंधन। कोई कह रहा है आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, और कोई कह रहा है कि आज मेरा पूरा भौतिक बंधन नष्ट हो गया। आज आप सबको भी लगभग 12 बजे 11:30 बजे चरणामृत प्राप्त होगा नित्यानंद प्रभु का। तो ऐसे ही सबको सोचना है कि आज इस चरणामृत का पान करते ही मेरा जीवन सफल हो गया, सारे भौतिक बंधन से मैं मुक्त हो गया। उसके बाद क्या करें, कहे भले आज ही हेलन कृष्ण रे दास, आज तो मैं कृष्ण का दास बन गया। कहे भले आज ही धन्य दिवस है प्रकाश, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, इतना शुभ दिन कभी हुआ ही नहीं। कहे भले पादो उदक बड़ा साधु लगे, कोई बोले चरणामृत है बड़ा स्वादु लगे, बड़ा स्वाद लग रहा है अब तो पीना ही पड़ेगा, बड़ा स्वादु लगे। एक खानो मुखेर मिष्ठान नहीं भांगे, इसकी जो मिठास है अभी तक मुख से जा ही नहीं रही। तो ये सब जो भक्त लोग हैं नित्यानंद प्रभु के चरणों को चरणामृत को पी रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु इसका पान कर रहे हैं, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। गौरांग महाप्रभु भी नाच रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी नाच रहे हैं, और सभी भक्त लोग पागल होकर नाच रहे हैं, और नाचते नाचते कोई किसको धक्का दे रहा है, कोई किसको धक्का दे रहा है, कोई किसकी गर्दन पकड़ के जोर जोर से रो रहा है, कोई किसको नीचे पटक रहा है, उसके चरणों की धूल सर पे लगा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और भक्त लोग ये नहीं सोच रहे कि भगवान भी हमारे साथ नाच रहे हैं और सेवक भी नाच रहे हैं, कोई किसको धक्का देते हुए जोर जोर से बोल रहे हैं बोय गौरांगा गौरांगा नित्यानंद। इसी ढंग से हम भी ऐसे नाचेंगे जब भगवान के दर्शन खुलेंगे और भगवान के चरणामृत अभिषेक के बाद जब आरती होगी, तो ऐसे ही भक्तों को खूब नाचना है उत्साहपूर्वक। जितना आज उत्साह से हम गौर निताय के आगे नाचेंगे उतना हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। इस ढंग से सब भक्त लोग और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबके सब नाचते हैं सची माता के आंगन में। तो ये बहुत सुंदर ये लीला है। श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ रहते थे, तो बहुत श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। मालिनी माता जो श्रीवास पंडित ठाकुर जी की भार्या हैं, उनकी आयु लगभग 60-70 वर्ष की होगी, वृद्ध अवस्था में थी, और नित्यानंद प्रभु जब आते थे उनके सामने तो क्या करते थे, उनकी गोद में बैठ के उनके स्तन से दूध का पान करते थे। इतनी विशेष लीला है, एक बूढ़ी स्त्री के स्तन में दूध आ जाता था नित्यानंद प्रभु को देखते ही, इतना वात्सल्य रस। और नित्यानंद प्रभु सबके सामने मालिनी माता के स्तन से दूध पान करते थे, इनको कोई समझ नहीं सकता। और कई बार ऐसे ही नग्न अवस्था में आ जाते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह नंगे घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ, मालिनी माता ने श्रीवास ठाकुर जी के पूजा का समय था तो उन्होंने सारे के सारे अर्चना की व्यवस्था कर दी। तो एक आचमन पात्र था, जैसे उन्होंने रखा एक कौवा आया और कौवा आचमन पात्र को उठाकर चला गया। तो अब मालिनी माता ने देखा अरे कौवा चला गया आचमन पात्र को उठाकर, तो मालिनी माता को बहुत चिंता हुई। तो वो रोने लगी क्योंकि अभी उनके पति आएंगे उनको डांटेंगे, अभी पूजा का समय हो गया। तो नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं, बोले माता क्यों रो रही हो? बोले कि वो आचमन पात्र कौवा उठा के ले गया। बोले इसमें कौन सी रोने की बात है, ए कौवे। वो कौवा आ जाते हैं, बोले आचमन पात्र लेके आओ। कौवा चला जाते हैं और आचमन पात्र लेके आ जाता है। बोले क्या है इसमें, आ गया आचमन पात्र। तो मालिनी माता बैठ के उनकी स्तुति करना शुरू कर देती है। बोले आपके लिए कोई मुश्किल कार्य है, आप तो कृष्ण बलराम थे, अपने गुरु के मरे हुए बेटे को यमलोक से ले आए थे, तो कौवा आचमन पात्र वापस ले आए, ये कौन सी बड़ी बात है? आपने अपने सिर पे कितने ब्रह्मांडों को रखा हुआ है, उनका पालन पोषण कर रहे हो, फिर कौवे से आचमन पात्र वापस मंगवा लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? लक्ष्मण के रूप में आपने सीता माता की रक्षा की, रावण के कुलवासियों का वध कर दिया, कौवे से आचमन पात्र मंगवा लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? तो इस ढंग से माननीय माता बलराम जी नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रही है। तो इसमें आचार्यगण टीका देते हैं कि इस लीला से हम क्या जान सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर मालिनी माता के पति थे और गुरु के समान थे। तो गुरु की सेवा करने के लिए मालिनी माता ने जैसे गुरु की सेवा प्रारंभ की, तो गुरु की सेवा करते करते उनकी सेवा में बाधा आ गई, वो आचमन पत्र उठा के चला गया। इसी ढंग से हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी है? सेवा के भाव की। तो हमारे हृदय में जो सेवा का भाव है, जो भक्ति का भाव है, जो वैष्णव के प्रति प्रीति है, जो हरि नाम के प्रति रुचि है, वो सब गायब हो गई है, वो सब चुरा ले गई है इस कौवे रूपी माया ने। कौवे रूपी माया उड़ा के चले गई, हमारे सारा भक्ति का भाव सेवा का भाव उठा के चले गए। और इसके भाव के बिना हमें वैष्णव के बीच में इतनी रति नहीं होती, हरि नाम के प्रति रुचि नहीं होती, कुछ सेवा करने की इच्छा नहीं होती। तो हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए? नित्यानंद प्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमें शक्ति देंगे कि हम वैष्णवों की सेवा कर सकें, हरिनाम में रुचि उत्पन्न कर सकें और गुरु की सेवा को पे हम खड़े उतरे। तो इस ढंग से उस कौवे का ये बहुत सुंदर लीला है। नित्यानंद प्रभु की माता का नाम पद्मावती था और उनके पिताजी का नाम हराई पंडित था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक चक्रधाम। आप सब गए, कितने भक्त लोग गए एक चक्रधाम में? वाह, एक चक्रधाम की। तो एक चक्रधाम में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक चक्रधाम ऐसी स्थान है जहां पांडव भी आए थे और बहुत सुंदर लीलाएं हैं। समय बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा कौन सी लीला का वर्णन करें। तो बताया जाता है कि जब हराई पंडित के यहाँ पे नित्यानंद प्रभु थे और एक चक्रधाम में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, तो सभी एक चक्रधाम के वासी सोचते थे कि इस बालक को किसने लीलाएं सिखाई हैं। बिल्कुल हूबहू वैसी लीलाएं करते थे। एक बार तो लक्ष्मण का रोल करते करते वो मूर्छित हो गए और सब घबरा गए कि क्या हो गया। तो तभी एक बालक को ध्यान आया कि मूर्छित होने से पहले इसने बताया था कि मैं मूर्छित हो जाऊं तो क्या लेना, संजीवनी बूटी लेके आना, उसको सुंघाना तभी मैं जीवित हूंगा। तो सारे परेशान हो गए थे कि जीवित नहीं हो रहा, मर तो नहीं किया, क्या हो गया। सब भलाई पंडित ने रोना शुरू कर दिया। तो फिर बालक को ध्यान आने, मुझे इससे पहले बोला था। तो वो उठा के लाए, उस नाक पे सुंघाया, तो एकदम तुरंत नित्यानंद प्रभु एकदम वापस चेतना में आ गए। तो सब लोग सोचते थे कहां से इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो तभी हराई पंडित के घर में एक सन्यासी आए, सन्यासी उनके घर में रुके। हराई पंडित को और पद्मावती को बहुत प्रिय थे नित्यानंद प्रभु, बहुत प्रिय थे। तो जब जाने लगे तो सन्यासी ने बोला कि मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? तो उन्होंने बोला मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। तो बोले मैंने अभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना है, मुझे अपना पुत्र दे दीजिए। ये सुनते ही हराई पंडित के ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया। वो कहे क्या करें, कैसे मैं अपना पुत्र दे सकता हूं? फिर उनको ध्यान आया रामायण में दशरथ के ऊपर भी यही बीते थे, विश्वामित्र आए थे और राम और लक्ष्मण को ले गए थे। तो फिर क्या करें, वो पद्मावती के पास गए, तुम्हारी क्या राय है? बोलो जो श्रेष्ठ है वो करो। तो बड़े अपने हृदय पे पत्थर रखकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उस सन्यासी को दे दिया। उसके बाद बताते हैं कि 3 महीने तक हराई पंडित ने ना कुछ खाया ना पिया, वो बिल्कुल शोकाकुल होकर बैठे रहते थे एकदम पत्थर की तरह। और बहुत जल्दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ गए और बाद में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत का सभी स्थानों पर वो गए। 20 साल तक वो भ्रमण करते रहे। नित्यानंद प्रभु गया में गए, वाराणसी में गए, वाराणसी में उन्होंने देखा गंगा बह रही है, गंगा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसमें स्नान किया। फिर वाराणसी से वो प्रयाग में आए इलाहाबाद में, फिर इलाहाबाद से वो मथुरा में आए, मथुरा से विश्राम घाट पर उन्होंने स्नान किया, और फिर वृंदावन के में गए। वृंदावन के बारावन को देखकर अपने उनको ध्यान आया, रे बलराम जी कैसे ग्वाल बालों के साथ गायों के साथ यहाँ पे खेलते थे। फिर गोकुल में गए, नंद महाराज जी के घर में बैठ के नित्यानंद प्रभु जोर जोर से रोने लगे, यशोदा माता और रोहिणी माता के विरह में। और फिर वहां से हस्तिनापुर में आए, हस्तिनापुर में देखा उन्होंने, उनको याद आए युधिष्ठिर महाराज की और पांडवों की, और यहां भी आकर रोने लगे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज और पांडव कृष्ण से आसक्त थे। जो हस्तिनापुर के वासी देखकर हैरान हो गए कि अरे ये रो क्यों रहे हैं, कोई जानता नहीं था। फिर इसके बाद यहां से वो दक्षिण भारत गए, शिवपुरम कांचीपुरम में और फिर विष्णुपुरम में। वहां जाकर देखा कि शिव के भक्तों में और विष्णु के भक्तों में खूब लड़ाई हो रही है, तो नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे। बोले दोनों का प्रेमी मैं ही हूं, वो शिव जी विष्णु के भक्त हैं शंकरशन के, और ये दोनों मेरे भक्त हैं, लड़ रहे हैं। तो कई बार एक ही गुरु के शिष्य होते और आपस में लड़ते हैं अज्ञानता के कारण। तो फिर आगे गए, रामेश्वरम में गए, कन्याकुमारी में गए, इस ढंग से घूमते घूमते महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में जब पंढरपुर में आए तो क्या हुआ, पंढरपुर में एक ब्राह्मण के घर में रुके। वो ब्राह्मण शिष्य था लक्ष्मीपति तीर्थ का। लक्ष्मीपति तीर्थ जी एक विद्वान थे जो कि ब्रह्म माधवाचार्य संप्रदाय में थे, और उनके साथ उनके कई और शिष्य थे। और लक्ष्मीपति तीर्थ बहुत वृद्ध अवस्था में थे और कृष्ण बलराम के उपासक थे। तो जब वो रात को विश्राम कर रहे थे तो उनके स्वप्न में बलराम जी आए, और बलराम जी ने कहा कि कल एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा, उसको दीक्षा दे देना। और दीक्षा का मंत्र लक्ष्मीपति तीर्थ के कानों में बलराम जी ने फूंक दिया। उसके बाद सुबह सुबह जब लक्ष्मीपति तीर्थ उठे तो उनके सामने कौन आ गए, नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु ने उनसे आवेदन किया कि मुझे दीक्षा दीजिए, तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद लक्ष्मीपति तीर्थ को इतना आकर्षण हो रहा था नित्यानंद प्रभु से कि ये कैसा शिष्य है, मेरे इतने शिष्य किसी से इतना आकर्षण नहीं हो रहा, बस मैं चाहता हूं ये मेरे साथ ही रहे, मैं इसको देखता ही रहूं, पर इतना आकर्षण क्यों हो रहा है समझ नहीं पा रहे थे। तो अगली रात लक्ष्मीपति तीर्थ को सपना आया, और उस स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु आए और धीरे 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 नित्यानंद प्रभु ने अपनी कांति बदल दी और बलराम जी के रूप में वो प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु की। और जैसे बलराम जी के रूप में प्रकट हो गए, लक्ष्मीपति तीर्थ पूरे भावावेश में आ गए कि जो उनके इष्ट थे बलराम जी स्वयं उनसे आए और दीक्षा लेके, वही बलराम जी ने उनको दीक्षा मंत्र दिया और वही बलराम जी उनके शिष्य बनके वो दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्मीपति जी को पूरे भावावेश में आ गए, और इसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो पंढरपुर में उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली। इस तरह से घूमते घूमते फिर दोबारा से साउथ इंडिया में गए, तो वहां उडुपी में उनसे उनकी भेंट हुई एक महान वैष्णव से जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। ऐसी माधवेंद्रपुरी उन्होंने देखा, उनको लगा कि इनका पूरा का पूरा देह कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत रहा है। तो क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन करते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, इतना भावावेश मूर्छित हो गए, और नित्यानंद प्रभु को देखते ही माधवेंद्र प्रभु मूर्छित हो गए। तो ये ऐसा होना चाहिए, दो वैष्णव आपस में देखे मूर्छित हो गए, दोनों मूर्छित हो गए। और जब माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी साथ, वो सब रोने लगे जोर जोर से, बोले अब क्या करें। तो रो रोकर उन्होंने क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जोर जोर से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र गाया, तो फिर माधवेंद्रपुरी भी चेतना में आ गए और नित्यानंद प्रभु चेतना में आ गए, और दोनों फिर एक दूसरे को आलिंगन किया, जमीन पर लौटने लगे, और सारे के सारे अष्टसात्विक विकार उनके देह में उत्पन्न होने लगे। और ये सब देखकर सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में माधवेंद्रपुरी जानते थे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। और इसके बाद बैठ के उन्होंने कृष्ण चर्चा की, और कहा जाता है कि ऐसी कथा ऐसी चर्चा की जो केवल कृष्ण ही समझ सकते थे। दो महान महान भक्त जो क्या चर्चा करेंगे। तो इस जंग से माधवेंद्रपुरी पाद से वो मिले, माधवेंद्रपुरी पाद नित्यानंद प्रभु के शिक्षा गुरु थे और लक्ष्मीपति तीर्थ उनके दीक्षा गुरु थे। तो इस ढंग से नित्यानंद प्रभु काफी भ्रमण करते रहे, और भ्रमण करके वो वापस आए मथुरा में, और तब उनको लगा कि अब निमाई पंडित ने दीक्षा ले ली है ईश्वरपुरी बात से, अब वो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करने वाला है, अब निमाई पंडित को मेरी आवश्यकता है। तो इसलिए फिर नित्यानंद प्रभु चले आते हैं नवद्वीप। तो यहां पर देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने जब तक चैतन्य महाप्रभु की उनको आज्ञा प्राप्त नहीं हुई उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया, ये उनकी विनम्रता दिखाता है। और जब तक उन्होंने, हालांकि वो स्वयं भगवान है, खूब प्रचार कर सकते थे, कृष्ण प्रेम से बहुत पोत्र थे, लेकिन उन्होंने जब तक निमाई पंडित की उनको आज्ञा नहीं मिली उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया। और जब फिर नंदनाचार्य के घर में वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, ये लीला भी बहुत सुंदर है और बहुत विस्तार में चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है, इसको नहीं बताएंगे आगे। तो इसके बाद निमाई पंडित के साथ मिलकर उन्होंने प्रचार शुरू किया। देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार करते थे। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु थे और लोचनदास ठाकुर एक भजन गाते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नितय नगरे बेड़ाए। अक्रोध, हालांकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, लेकिन बलराम जी को बहुत क्रोध आता था। बलराम जी जब रोमहर्षण के पास गए, रोमहर्षण व्यासासन से खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, घास का तिनका लिया, खट से गर्दन काट दी घास के तिनके से, है ना। और यही नित्यानंद प्रभु जो प्रचार करने आते थे उस घास के तिनके को मुंह में रखकर लोगों के पांव पड़ते थे कि एक बारी गौरांग बोल दो, एक बारी गौरहरी बोल दो, बस कितने विनम्र। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। अधम पतित जीवर द्वारे द्वारे किया, हरि नाम महामंत्र दिच्छे न बिलिया। वे अत्यंत पतित और दयनीय आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरि नाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे थे, जिसके वही वे देखते दांतों के बीच में तिनकों को पकड़कर जोर से चिल्लाकर कहते, कृपा करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। अगर हम नित्यानंद प्रभु खरीदना चाहते हैं तो क्या करना है, क्या बोलना पड़ेगा आपको, गौर हरि। अरे मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं, हे मिधाई, तुम्हारे चरणों से मैं विनती करता हूं, केवल एक बार हरि हरि का नाम का उच्चारण करो, केवल एक बार। प्रिय मिधाई, केवल गौर हरि बोलो, कृपया उनके पवित्र नाम का जप उच्चारण करो और तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। ये प्रचार की भावना होनी चाहिए। प्रचार करते समय हमें, जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनके हित, उनके लिए हमारे हृदय में कम से कम आदर जरूर होना चाहिए, है ना। जब तक हमारे हृदय में उनके लिए आदर नहीं होगा हम प्रचार नहीं कर सकते, कि प्रचार वास्तव में परमात्मा हृदय को बदलते हैं। लेकिन जिन जीवों को हम प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति आदर ही नहीं है और हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मान रहे हैं तो प्रचार नहीं होगा। कैसे नित्यानंद प्रभु चरण पकड़कर बोले, एक बारी गौर हरि बोल दो, अगर एक बारी गौर हरि बोल दोगे तो मुझे खरीद लोगे। नित्यानंद प्रभु ऐसे लोगों घर में जा रहे हैं जो कि अधम हैं, पतित हैं, जिनों के भगवान से विमुख हैं, और ये स्वयं भगवान हैं, इनसे विमुख हैं, उन्हीं के वो पांव पड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के पास इतनी शक्ति है कि किसी का भी सर काट सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, तो ये क्या, एक श्वास वापिस लेते हैं सारे के सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में समा जाते हैं, और एक सांस लेते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर देते हैं। वो ऐसे अधम लोगों के घर में जाकर पांव पड़ रहे हैं, एक बार गौर हरि बोल। तो ये प्रचार की भावना होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हमारे में विनम्रता होगी उतना ज्यादा हम प्रचार में सफल होंगे, और जितना हमारे अंदर श्रेयस्कर की भावना होगी कि मुझे बहुत ज्ञान है, आज देखना मैं क्या सुनाता हूं इनको, ऐसी तैसी कर दूंगा इनकी, तो भगवान हमारी ऐसी तैसी कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं कैसे प्रचार करना है। जब तक गुरु ने आज्ञा नहीं दी प्रचार शुरू ही नहीं किया, और जैसे आज्ञा मिली किस ढंग से प्रचार किया। तो एक बार प्रचार करते करते इनके पार्टनर कौन थे, हरिदास ठाकुर, और कहां पहुंच गए, जगाई मधाई के उद्धार के लिए। और जब जगाई मधाई इनके पीछे भागे, हरिदास ठाकुर कहते हैं कहां फंसा दिया मुझे 22 बाजारों में मुसलमानों ने पीटा, तब मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना अब लग रहा है। तो कैसे, क्या व्यक्ति हो के, और कोई नहीं मिला था प्रचार करने के लिए। तो इस ढंग से हरिदास ठाकुर उनसे मजाक करते थे। लेकिन जगाई मधाई का भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार कर दिया। जब जगाई को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुलाया, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों इस कलयुग में आए हैं लोगों का संहार करने के लिए नहीं। अगर तुम सारे पापी जीवों को मार दोगे तो इस कलयुग में कोई बचेगा ही नहीं। तो हम यह मारने नहीं आए हैं, इनको कृष्ण प्रेम देने आए हैं। और ये जो जगाई है, इसने मधाई को रोका था। नित्यानंद प्रभु के सर से खून बह रहा था, बोले मुझे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जगाई ने मेरी बहुत मदद की। जगाई ने मधाई को रोका कि और मत मारो। तो महाप्रभु ने यह सुना तो महाप्रभु ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अपने चरण कमलों को जगाई के सर पे रख दिया। तो देखिए, तो ये नित्यानंद प्रभु की क्या लीला है। नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई के दोषों को नहीं देख रहे। जगाई क्या थे? जगाई और मधाई हर तरह का पाप उन्होंने किया था। ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या, स्त्रियों के साथ बलात्कार, चोरी, डकैती, सब कुछ। लेकिन एक अच्छा काम कर दिया कि जगाई ने मधाई को रोक दिया कि और मत मारो। बस नित्यानंद प्रभु ने यह पकड़ लिया कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। और केस पुटअप कर दिया चैतन्य महाप्रभु के सामने, ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत अच्छा भक्त है, इसने मेरी रक्षा की। और नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने पास कर दिया। चैतन्य जगाई के ऊपर तुरंत अपने चरण कमल रख दिया। देखिए, तो ये कितने आसानी से हमें नित्यानंद प्रभु हम प्रसन्न कर सकते हैं, कितनी आसानी से। बस नित्यानंद प्रभु ये चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह दूसरे वैष्णवों के गुणों को देखने का प्रयास करें। जगाई मदाई अवगुणों से भरपूर थे, अवगुणों के खान थे, एक छोटे से गुण को देखा, उसको मैग्निफाई कर दिया और प्रस्तुत कर दिया चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो अगर नित्यानंद प्रभु कृपा को आकर्षित करना है तो ये बहुत सुंदर तरीका है। तो इस ढंग से हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा को हम कई रूप से आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले गौरांग महाप्रभु की सेवा, जो भी उसमें जुड़ेगा महाप्रभु बहुत, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। गौरांग महाप्रभु के सेवकों की सेवा करके हम नित्यानंद प्रभु को आकर्षित कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु के धाम मायापुर धाम की सेवा करके हम नित्यानंद प्रभु कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अभी मायापुर धाम जाएंगे, हमें यहाँ जाके धाम में सेवा करनी चाहिए, धाम को जाके गंदा नहीं करना चाहिए, धाम में जाके हमें सफाई करनी चाहिए, धाम वासियों की सेवा करनी चाहिए, धाम में ज्यादा से ज्यादा हरिनाम देना चाहिए। जब धाम की सेवा करेंगे नित्यानंद प्रभु कृपा मिलेंगे। गौरांग महाप्रभु की सेवा करेंगे नित्यानंद प्रभु कृपा मिलेंगे। गौरांग प्रभु के सेवकों की सेवा करेंगे नित्यानंद प्रभु कृपा मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, नए नए लोगों को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से जोड़ेंगे तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज्यादा पॉपुलर भगवान बनाना है। कोई नहीं जानता, अभी पूरा विश्व खाली पड़ा है जो नहीं जानता चैतन्य महाप्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु के विषय में। हमारा कर्तव्य ये कि हम उन लोगों को बताएं कि नित्यानंद प्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है। इसके अभाव में लोग पता नहीं किसी को भगवान मान रहे हैं। आजकल साईं बाबा नंबर वन भगवान चल रहे हैं, जबकि नंबर वन क्या, ओनली वन भगवान है, गौरांग महाप्रभु। और हमें इसको पूरा विश्व रूप में प्रचार करना चाहिए इसमें। तो जितना हम प्रचार करेंगे, नए लोगों को नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा से जोड़ेंगे, उतना हमें उनकी कृपा मिलेगी। और बड़ी आसानी से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। क्या बोल के, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, बस इतना कहने मात्र से ही, इतना कहने मात्र से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी नवदीप महात्म्य में लिखते हैं, जब कोई गौरांगा गौरांगा नित्यानंद नित्यानंद जोर से चिल्लाता है तो कृष्ण प्रेम भागते हुए पीछे आता है। किसने गौरांग महाप्रभु का नाम लिया, किसने नित्यानंद प्रभु का नाम लिया, गौरांग कृष्ण प्रेम पीछे पीछे आता है उस व्यक्ति के। तो क्या करना है, हमने क्या बोलना है, गौरांगा नित्यानंद, सो इजी। कितना आसान है। तो नित्यानंद प्रभु वास्तव में मूल गुरु तत्व है। नित्यानंद प्रभु जीवों को कृष्ण से जोड़ते हैं, गौरांग महाप्रभु से जोड़ते हैं प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। जैसे कि बताया कि भगवान विषय है, नित्यानंद प्रभु प्रकाश विग्रह है और गुरु को बोला जाता है आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह का अर्थ है गुरु उनके ऐसा रूप है जिनकी हम आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण हम कर सकते हैं गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके। नित्यानंद प्रभु दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं और उनका एक रूप हमारे हृदय में चेते गुरु परमात्मा के रूप में है। सभी गुरु नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं। तो हमें नित्यानंद प्रभु कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के शरण लेकर। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हम नित्यानंद प्रभु के विषय में आज जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था की स्थापना की। इस्कॉन संस्था वास्तव में नित्यानंद प्रभु की संस्था है। जो कार्य नित्यानंद प्रभु ने किया वही श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के कृपा के शक्तावेश अवतार है। और श्रील प्रभुपाद जी ने गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्थापना पूरे विश्व भर में की। और हम देख सकते हैं कि गौर निताई कृपा से कितने ही बद जीवों का उद्धार हुआ। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी ने जादू रानी और अन्य भक्तों को बोला कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तस्वीरें बनाओ, तो तस्वीरें बनाते बनाते उन्होंने बहुत बड़े बड़े बाल दिखा दिए गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यस, चैतन्य महाप्रभु वाज आल्सो ए हिप्पी, कि महाप्रभु एक हिप्पी थे, एंड ही केम हियर टू सेव ऑल ऑफ यू। तो प्रभुपाद जी बंगाली एक्सेंट से बोल रहे थे तो भक्तों ने सुना सेव की जगह सुना शेव, तो भक्तों ने बोले शेव ऐसे करके लोग हंसने लगे। तो प्रभुपाद समझ गए कि क्या समझ रहे हैं, तो बोले यस महाप्रभु हैज कम टू सेव एंड शेव ऑल ऑफ यू, कि आपको बचाने भी आए आपको शेव करने भी आए। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि हर तरह की अड़चन जो है वो देखिए, उनका क्या हिप्पीज जो थे, क्या कल्चर था उनका, कितने वो नरक में पड़े हुए थे और कैसे श्रील प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करके आज वो परम वैष्णव है। हम ऐसे भक्तों को जानते हैं जो कि एक कुछ चलता हुआ कुत्ता दिखाई देता था उसको मार देते थे और उस कुत्ते को खा जाते थे, और आज वो फुल टाइम डिवोटी बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं। साक्षात देखा है ऐसे कितने ऐसे लोग हैं। चाइना के लोग भक्त बन रहे हैं जो सब चलता फिरता उड़ता तैरता सब खा लेते थे लाइव, ऐसे ही चलता हुआ ऑक्टोपस उठाया खा लिया, अब वो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। सोचिए कैसे जगाई, कितने जगाई बधाइयों का उद्धार प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है और प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा हो रहा है। तो ये इस्कॉन संस्था है, ये वास्तव में नित्यानंद प्रभु की संस्था है। और लोचनदास ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई लोचन बोले मोर निताई जीवन भजीलो जानी या शून्य से ही आत्मघाती हो लो, कि नित्यानंद प्रभु की इतनी कृपा को सुनकर नित्यानंद प्रभु पुकार रहे हैं जीवों को, आओ 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 प्रेम ले जाओ। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कृष्ण प्रेम से डुबा दिया है। अभक्त लोग भी इसके ऊपर तैर रहे हैं और भक्त लोग गहराई में, सबको वो प्रेम देना चाहते हैं, सबको पुकार रहे हैं, इसके बाद भी कोई नहीं आता है, कितना दुर्भाग्यशाली है। आत्मघाती, अपने आप को वो मार रहा है। इसी ढंग से कोई चेतन श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में है और प्रभुपाद जी के सही ढंग से शरण ग्रहण नहीं कर रहा तो वो आत्मघाती है। तो आज हम इस शुभ अवसर पर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे भक्त में जो भी अड़चन है, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में अड़चन थी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण की तो उनको चैतन्य महाप्रभु के चरण मिल गए। हम लोगों के जीवन में बहुत सी अड़चने हैं। कौन सी अड़चन है? सबसे बड़ी अड़चन है हमारी इंद्र तृप्ति में रुचि, हमारी भौतिक इच्छाएं। श्रीमद भागवतम के चौथे स्कंद में सनत कुमार पृथु महाराज के बताते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे हैं उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा ये है कि आत्म उन्नति के विषयों में रुचि ना रख के दूसरे विषयों में रुचि रखना, यानी कि भौतिक इच्छाएं रखना। भौतिक इच्छाएं बताया गया है भागवतम में बड़े बड़े कुशाग्रास के समान है जो कि नदी के सारे जल को सूख लेती हैं। जितने हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं होंगी हमारे भक्ति के भाव को सूख लेंगे। और हम लोग ये प्रार्थना करें आज नित्यानंद प्रभु से कि एक दो मिनट नित्यानंद प्रभु से हम ये प्रार्थना करें कि जो हमारे अनर्थ हैं और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इन सब का इस सब को वो हर ले। क्योंकि हम लोग अपनी शक्ति से इन कमियों को पार नहीं कर पाएंगे। हम लोग भक्ति में आने के बाद भी अपने इन अनर्थों से आसक्त हैं और ये हमारे भक्ति में प्रगति को रोकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु से आज हम याचना कर सकते हैं कि कई बार हम भक्तों के समाज में आने के बाद भी केवल एक दिखावटी भक्त के रूप में रह जाते हैं। कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए, कितने साल बीत गए, अभी भी हृदय वैसे का वैसा कठोर है। अभी भी मैं केवल अपने लाभ के लिए सोचता रहता हूं। अभी भी मैं गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। तो एक दिखावटी भक्त के रूप में घूम रहा हूं और ये मेरी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो क्यों ना मैं नित्यानंद प्रभु से चरणों में प्रार्थना करूं कि मैं एक सही वैष्णव बन सकूं। और आज के दिन हमें श्रीला प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद आप मुझे अपनी आर्मी में, जो आपकी सेना है, इसमें एक सैनिक बना दीजिए, वास्तविक रूप में अपना एक सैनिक बना दीजिए, ताकि आप जो नित्यानंद प्रभु कृपा को बांट रहे हैं, मैं भी इस कृपा को बांटने में आपका सहयोग कर सकूं। तो इस ढंग से हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है, इसके हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नित्यानंद प्रभु की चर्चा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके प्रश्नों को गाएं। नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, दाई गोपे वनंदे।